संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 25 फरवरी 2022 के बुलेटिन की हेडलाइंस। यूएन प्रमुख ने की यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान को रोकने की अपील, कहा दुनिया को युद्ध नहीं शांति की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धमकी या बल प्रयोग को निषिद्ध करने वाला प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में रूस के वीटो के कारण नहीं हुआ पारित। यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई के बाद आम जनता में भगदड़ और बदहवासी। दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करने के लिए वैश्विक एकजुटता की पुकार, साथ ही कुछ अन्य खबरें भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं, पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए वैश्विक समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई गलत है और यूएन चार्टर के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। यूएन प्रमुख ने न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया को युद्ध की विभीषिका की नहीं बल्कि शांति की जरूरत है। यूएन महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने भी तत्काल युद्ध विराम, तनाव में कमी लाने और कूटनीति व संवाद की ओर लौटने का आग्रह किया है। यूएन प्रमुख ने कहा कि किसी एक देश द्वारा किसी अन्य देश के खिलाफ एकतरफा तौर पर बल प्रयोग किया जाना उन सिद्धांतों का उल्लंघन है जिनके अनुपालन के लिए हर एक देश ने प्रतिबद्धता जताई हुई है। महासचिव ने कहा कि हर दिन मैं स्पष्ट तरीके से कहता रहा हूं कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाइयां सीधे तौर पर यूएन चार्टर से टकराती हैं। ये बात मौजूदा सैनिक कार्रवाई पर भी लागू होती है।
The decisions of the coming days will shape our world and directly affect the lives of millions upon millions of people.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों के निर्णय हमारी दुनिया को आकार देंगे, जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां प्रभावित होगी। अगर यूएन चार्टर का अनुपालन किया जाए तो अभी मौजूदा पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए देर नहीं हुई है, हमें शांति की जरूरत है। यूएन महासचिव के शब्द। उन्होंने कहा कि ये सैन्य कार्रवाई गलत है, ये यूएन चार्टर के विरुद्ध है, ये अस्वीकार्य है, मगर ऐसा नहीं है कि इसे पलटा ना जा सके। इस बीच यूएन सुरक्षा परिषद में गुरुवार को यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2 का पालन किए जाने की पुकार लगाने वाला एक प्रस्ताव पेश किया गया जो रूस द्वारा वीटो किए जाने के कारण पारित नहीं हुआ। इस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी एक देश द्वारा किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वायत्तता को किसी तरह की धमकी देने या बल प्रयोग से बचने को कहा गया है। यूक्रेन संकट पर विस्तृत कवरेज हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, पता तो आप जानते ही हैं news.un.org/hi। यूक्रेन में रूस द्वारा शुरू किए गए कथित विशेष सैन्य अभियान में राजधानी कीव और अन्य शहरों में घातक मिसाइल हमलों की खबरों के बीच भयभीत परिवार भूमिगत स्थलों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हिंसा की वजह से हजारों लोग जबरन विस्थापित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में ईंधन, नकदी व चिकित्सा सामग्री की किल्लत है और लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि रूसी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। यूएन एजेंसी की प्रवक्ता रवीना शमदसानी ने कहा,
Civilians are terrified of further escalation, with many attempting to flee their homes and others taking shelter where possible.
आम लोग हालात और बिगड़ने की आशंका से डरे हुए हैं। बहुत से लोग अपने घर छोड़कर जाने की कोशिश में हैं और अन्य जहां संभव हो सके शरण ले रहे हैं। अब तक कम से कम 127 आम नागरिकों के हताहत होने की रिपोर्टें मिली हैं। बमबारी और हवाई कार्रवाई में 25 लोगों की मौत हुई है और 102 घायल हुए हैं। हताहतों का वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने यूक्रेन में लगभग 75 लाख बच्चों की जिंदगियों और सलामती के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। इस बीच मौजूदा संकट के मद्देनजर महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को शांति की अपील की और केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से $2 करोड़ की रकम जारी की है ताकि तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। हिंसा प्रभावित इलाकों में ईंधन, मेडिकल किट और नकदी की किल्लत महसूस की जा रही है। यूएन महासचिव ने भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और साझेदार संगठन जरूरत की इस घड़ी में वहां मौजूद रहकर यूक्रेन के लोगों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। यूएन शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक हिंसा के बीच जबरन सामूहिक विस्थापन की शुरुआत हो गई है और 1 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। इस बीच रूस के अनेक शहरों में युद्ध के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पत्रकार भी हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाने के लिए और ज्यादा वैश्विक एकजुटता की अपील की है। अब्दुल्ला शाहिद ने सार्वभौमिक टीकाकरण पर शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय चर्चा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे तो दुनिया भर में अभी तक कोविड-19 वैक्सीन के 10 अरब टीके लगाए जा चुके हैं, जो कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक व्यक्ति का टीकाकरण करने के लिए काफ़ी हैं, मगर अफ्रीकी संघ की 83% आबादी को अभी पहला टीका भी नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि अगर महामारी ने हमें कुछ दिखाया है तो वो है सामूहिक कार्रवाई की महत्ता और ये कि हमारी ताकत हमारी एकजुटता में निहित है। इस बीच WHO ने कहा है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही निकले एक और वायरस रूप BA.2 को अभी चिंता का कारण मानते रहना होगा। ध्यान रहे कि दुनिया भर में इस समय कोविड-19 के संक्रमण के लिए यही वेरियंट जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और नॉर्वे में स्थित उसके एक साझीदार संगठन की एक रिपोर्ट में जंगलों में आग लगने की घटनाओं की आवृत्ति व गहनता बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक इन घटनाओं में 14% बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसकी एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और भूमि इस्तेमाल में बदलाव हैं। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि 2030 तक वनों में आग फैलने की घटनाओं में 30% और इस सदी के अंत तक 50% की वृद्धि हो सकती है। यूएन पर्यावरण एजेंसी की रिपोर्ट स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर द राइजिंग थ्रेट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी लैंडस्केप फायर्स को केन्या के नैरोबी शहर में यूएन पर्यावरण असेंबली का सत्र शुरू होने से पहले जारी किया गया है। पर्यावरण असेंबली का सत्र अगले सप्ताह शुरू हो रहा है, जिसमें 193 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जंगलों में आग लगने की घटनाओं से विश्व के निर्धनतम देश विषमतापूर्ण ढंग से प्रभावित होते हैं और आग की लपटों के बुझ जाने के लंबे समय बाद तक वे उसके नुकसान की आंच झेलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जंगलों में आग लगने से उठने वाले धुएं से आमजन के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उन्हें श्वसन तंत्र या हृदय से जुड़ी समस्याएं पेश आ सकती हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं कुछ पशुओं व पौधों की प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल रही हैं।
संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में माता पिता, अभिभावक और गर्भवती महिलाएं बेबी फार्मूला दुग्ध पदार्थों की आक्रामक मार्केटिंग का आसान निशाना बनने के दायरे में हैं। एक संक्षिप्त डिस्पैच सुनिए प्रतिष्ठा जैन से।
यूएन एजेंसियों की यह रिपोर्ट 8 देशों में अभिभावकों, माता पिता, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत पर आधारित है। रिपोर्ट दर्शाती है कि भ्रामक मार्केटिंग संदेशों के जरिए स्तनपान व माताओं के दूध के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और महिलाओं के आत्मविश्वास को कम किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार $55 अरब वाला फार्मूला दुग्ध पदार्थ उद्योग शिशुओं को दूध पिलाने के मामले में अभिभावकों और माता पिता के फैसलों को प्रभावित करने के लिए भ्रामक, आक्रामक और अनैतिक मार्केटिंग रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। कुछ भ्रामक जानकारियों में ये भी है कि माता का दूध शिशु के पोषण के लिए अपर्याप्त होता है और ये भी कि समय के साथ माता के दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है। यूएन एजेंसियों ने कहा है कि शिशु को जन्म के पहले घंटे के दौरान माँ का दूध पिलाना, उसके बाद 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाना और अगले 2 साल और उससे आगे तक भी स्तनपान कराना जारी रखने से बाल कुपोषण के तमाम प्रकारों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच बनता है।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।